ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते हैं शेफ, तो उनमें आपको 17 to 20 लेयर्स मिलते हैं, जिसमें केक क्रीम, केक क्रीम, केक क्रीम मिलती है। तो अगर आप उसको काटते हैं केक को और आप उसका स्लाइस प्लेट में रखते हैं, तो क्या हर लेयर आपको अलग अलग नजर आती है? कैन यू काउंट द लेयर्स या नहीं? नहीं? बहुत ही अनाड़ी शेफ ने बनाया होगा। अगर किसी परफेक्ट शेफ ने बनाया होगा तो आप सारी लेयर्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है? अब जाकर गूगल कीजिएगा जब टाइम मिले, ब्लैक फॉरेस्ट केक गूगल कीजिएगा, द मैक्सिमम लेयर्ड ब्लैक फॉरेस्ट केक, फिर जाकर देखिएगा कि जब उसका स्लाइस कटता है तो क्या लेयर्स अलग अलग नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? हर लेयर अलग अलग नजर आती है, एंड यू कैन काउंट इन ईच स्लाइस कि उस ब्लैक फॉरेस्ट केक में शेफ ने कितने लेयर्स लगाए। जब तिबाकन को लेयर्स के साथ ट्रांसलेट किया जाता है तो इसका मफहूम यह लिया जाता है कि अल्लाह ने जो 7 आसमान बनाए हैं ये लेयर्स में है, एंड ईच लेयर इज प्रोमिनेंट। कहां पहला आसमान खत्म होता है, कहां दूसरा शुरू होता है, कहां तीसरा शुरू होता है, कहां चौथा शुरू होता है, एवरीथिंग इज प्रोमिनेंट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, आपने फरमाया कि पहले आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान में 500 साल का फासला है, फिर दूसरे आसमान से तीसरे आसमान में इसी तरह 500 साल का फासला है, एंड दिस विल कैरी ऑन टिल 7 स्काई। फिर सातवें आसमान के बाद एक समुन्दर है जिसका फासला 500 साल का है, और उस समुन्दर के ऊपर अल्लाह का अर्श है। तो दीज आर तिबाकन परफेक्ट लेयर्स हैं। कैसी लेयर्स हैं अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। तिबाकन के ये दो मफहूम जो स्कॉलर्स ने किए, उन्होंने पिछले सारे अब तक के कॉन्टेक्स्ट से इस सूरत को जहां कनेक्ट किया बहुत खूबसूरत तरीके से। वो कहते हैं कि इसकी ऑडियंस में दो लोग हैं ना, अगर आप इसकी ऑडियंस मक्की दौर में देखें तो दो तरह के लोग इसको सुन रहे थे सूरह मुल्क को, एक सहाबा, दूसरे कुरैश जिनको सुनाने की कोशिश की जा रही थी। या आज के दौर में एक सुनता है अल्लाह का फरमा बरदार और एक सुनता है अल्लाह का नाफरमान। जब फरमा बरदार सुनता है तो उसको तिबाकन की एक डेफिनेशन परफेक्टली समझ आ जाती है एक एंगल से। मोमिन कुरान सुनता है और मोमिन सुनता है कि अल्लाह ने 7 आसमान तिबाकन बनाए, तो उसके लिए दुनिया और आखरत का कॉन्सेप्ट जो पीछे आया था, खलकल मौत वल हयाता, 7 आसमान जैसे फ्यूज्ड हैं, सिंक्रनाइज्ड हैं। मोमिन की जिंदगी में हर दिन, हर महीना, हर साल उसकी आखरत के कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे ही फ्यूज्ड और सिंक्रनाइज्ड होता है। मोमिन अपनी आखरत से गाफिल नहीं होता, मोमिन हर दिन अपनी मौत को याद रखता है। मोमिन के लिए दुनिया की जिंदगी और आखरत की जिंदगी, दिस इज फ्यूज्ड टुगेदर, सीमलेस कम्युनिकेशन है इसके दरमियान में। हमें इस वक्त फरिश्ता नजर नहीं आता है, लेकिन क्या हमारा ईमान है कि फरिश्ते मौजूद हैं? हम में से वो फरिश्ते अलग हैं जिन्होंने इस जगह को ढांपा हुआ है, रहमत के फरिश्ते। हम सबके साथ दो दो फरिश्ते हैं, तो इस वक्त तो फरिश्ते हमसे ज्यादा क्वांटिटी में है। क्वांटिटी अगर हम देखें, नंबर काउंट करें, हमसे ज्यादा इस वक्त फरिश्ते मौजूद हैं। फॉरगेट अबाउट रहमत के फरिश्ते जिन्होंने इस वक्त इसकी छत को ढांपा हुआ है, अगर हम सिर्फ बात करें उन फरिश्तों की जो साइमल्टेनियसली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो इस कमरे में जितनी खवातीन हैं उसके दुगने फरिश्ते हैं, इसलिए कि हर एक के कंधों पर दो बैठे हैं हर एक के साथ, दिस इज मिनिमम। तो इसका मतलब क्या है? हमारा ईमान है, मोमिन का ईमान होता है कि उसका गैब का मामला जो उसको आंखों से नजर नहीं आता, और उसका दुनिया का मामला जिसको वो आंखों से देख रहा होता है, साइमल्टेनियसली फ्यूज्ड होता है। मोमिन अपनी दुनिया की जिंदगी में अपनी मौत को हर दिन याद करता है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत को कसरत से याद करो। अल्लाह के रसूल दिन में कई कई मर्तबा मौत को याद किया करते थे। सो तिबाकन का जो मफहूम है सीमलेस कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके अंदर मोमिन की डेफिनेशन फिट होती है इस एंगल से कि मोमिन के लिए दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी दोनों एक ही पेस पर चलते हैं। वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस अपनी आखिरत की अकाउंटेबिलिटी को सामने रख के लेता है। काफिर, पिछले कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक काफिर का माइंडसेट तिबाकन के अंदर लेयर्स की तरह आता है। काफिर अपनी एक जिंदगी को बिल्कुल अलग रखता है, ये मेरी दुनिया की जिंदगी है, व्हाट दीन हैज टू डू इन इट। काफिर हो, नाफरमान हो, गाफिल हो, या वो मुसलमान हो जिसको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं बनना, वो कहता है दीन मस्जिद तक अच्छा, हरम के सहन तक अच्छा, मदीना मक्का तक अच्छा, किसी का इंतकाल हो जाए तो कब्रिस्तान तक दफनाने तक अच्छा, बच्चा पैदा हो जाए तो अकीका कर दो इस हद तक अच्छा, बाकी मेरी जिंदगी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेयर. वट दीन हैज टू डू इन माई फेयरवेल पार्टी, वट दीन हैज टू डू इन माई वलीमा, वट दीन हैज टू डू विद माई मंगनी. क्यों कहते हैं मंगनी इस्लाम में नहीं है, मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगा. वट दीन हैज टू डू विद माई फैशन, क्यों मुझे दीन डिक्टेट करता है, दिस इज माई लाइफ, दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेयर पैटर्न. ये तिबाकन का दूसरा फॉर्म एक माइंड सेट शो कर रहा है. मौत अलग है, देख लेंगे जब मौत आएगी, देख लेंगे जब जहन्नुम सामने आएगी, कह देंगे अल्लाह को, बता देंगे अल्लाह को जब अल्लाह हिसाब किताब लेगा. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट माइंड सेट. ये दुनिया की जिंदगी अलग है, देखेंगे जब आखिरत आएगी. सात आसमान में तिबाकन का दूसरा माइंड सेट आपको काफिर का डिपिक्शन नजर आता है. तो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से यहां ये बात मेंशन कर दी कि अल्लाह ने मोमिन और काफिर, मोमिन और नाफरमान, इन दोनों के लिए भी निशानियां जो हैं वो इन सात आसमानों में रखी हैं. जिंदगी और मौत के पीछे की डेफिनेशन अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो सात स्काइज की, सेवन हेवेंस की साइंस को पढ़ना शुरू कर दे. अल्लाह ने जितनी भी कायनात बनाई है और अल्लाह ने कुरान में जितना भी नेचुरल फिनोमेना डिस्क्राइब किया है, चाहे वो दुनिया के मुख्तलिफ सिस्टम्स हों, चाहे बारिश हो, चाहे पानी हो, चाहे इंसान की अपनी अनफुस की आयात हो, चाहे आपके फल हों, चाहे आपका खाना पीना हो, जितनी भी अल्लाह ने कायनात की फिजिकल फिनोमेना को कुरान में बयान किया है, हर एक फिनोमेना के पीछे हजारों स्पिरिचुअल लेसन्स मौजूद है. इवन जो जन्नत का भी जिक्र कुरान में नेमतों का आया है, जन्नत के फल हों, जन्नत के बाग हों, जन्नत के दरिया हों, जन्नत के वाटरफॉल्स हों, उनके पीछे भी स्पिरिचुअल रियलिटीज मौजूद हैं. तो जितना नेचुरल फिनोमेना आता है उसके पीछे स्पिरिचुअल फैक्ट्स होते हैं. अल्लाह ने नेचुरल फिनोमेना सात आसमानों का डिस्क्राइब किया है, इसके पीछे स्पिरिचुअल फैक्ट मौजूद है. जैसे आसमान लेयर्स में मौजूद है और वो लेयर्स कभी प्रोमिनेंट होती हैं, कभी प्रोमिनेंट नहीं होती, ऐसे इंसान की जिंदगी पूरी की पूरी लेयर्स में डिवाइडेड है. सीम टू बी सीमलेस कंटिन्यूएशन नजर जरूर आती है, कभी कभी इंसान भूल जाता है, लेकिन लेयर्स हैं, तबकन हैं. सूरतुल इंशिकाक की आयत नंबर 19 में आता है, लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम एक के बाद एक स्टेज से होते हुए आगे बढ़ते हो. इंसान की रूह का पैदा होना एक तबक था. तबका कहते हैं ना उर्दू में, अरबी का ही लफ्ज है तबका. क्या मतलब होता है तबका? दिस इज द वन पार्ट, एक कंपार्टमेंट, एक सेक्ट, एक चीज आपकी. तुम अपनी रूह के प्रोसेस में, जब अल्लाह ने तुम्हारी रूह को क्रिएट किया वो एक तबक था, फिर अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँ के वूम में फरिश्ते के जरिए ब्लो करवा दिया, वो एक तबक था. तुम इस दुनिया में आ गए, पैदा हो गए, वो एक तबक था. फिर अल्लाह तुमको बड़ा करता है, उम्र में बढ़ाता है, वो एक तबक था, तुम एडल्ट बन गए. फिर अल्लाह तुमको बुढ़ापे की तरफ लेकर जाता है, वो एक तबक था. फिर अल्लाह मौत देता है, मौत एक तबक है. फिर अल्लाह कब्र की जिंदगी लेकर आता है, कब्र की जिंदगी एक तबक है. और फिर उसके बाद रोजे महशर और कयामत कायम होगा, वो एक तबक है. तो इंसान की पूरी जिंदगी सीमलेस कंटिन्यूएशन हो या डिसकंटिन्यूएशन हो, इंसान महसूस करे या ना महसूस करे, इंसान की जिंदगी भी आसमान की तरह तबकन के अंदर डिवाइडेड है. अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से जहां आसमान के लेवल्स बताए वहां अल्लाह ने इंसान की जिंदगी को इसके साथ सिंक्रनाइज कर दिया. आगे फरमाया, मा तरा फी खल्क रहमानी मिन तफावुत, क्या तुम इस अल्लाह की तखलीक में, मा तरा, क्या तुम नहीं देखते हो इस अल्लाह की तखलीक में किसी किस्म का कोई गैप, किसी किस्म का कोई फ्लॉ. ये जो यहां पर आयत आई है, मा तरा फी खल्क रहमानी मिन तफावुत, यहां ये नहीं आया मा तरा फिस समाई मिन तफावुत. पीछे क्या था? पीछे था आसमान बनाए तबकन के अंदर. यहां ये नहीं कहा मा तरा फिस समाई मिन तफावुत, तो क्या फिर तुम आसमान में कोई तफावुत, कोई फ्लॉ देखते हो? नहीं, अल्लाह ने इसको जनरलाइज कर दिया. आसमान के लिए भी है और अल्लाह की हर मखलूक के लिए भी है. जो कुरान के सामने आकर बैठता है वो नैरो माइंडेड नहीं रह सकता. जो कुरान के सामने आकर बैठता है, कुरान उसको जगा कर रखता है. जो कुरान को समझना शुरू कर देता है, कुरान उसको समझना शुरू कर देता है। हम यहाँ आसमानों की साइंस सीखने नहीं आए, हम यहाँ अपना मेंटल स्ट्रक्चर, अपना थॉट पैटर्न, अपना तस्किया करने आए हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पर आसमान का लफ्ज ओमिट करके इस जुमले को जनरल कर दिया है, यानी जो अल्लाह की तखलीक है उसमें कोई फ्लॉ, उसमें कोई टेढ़ नहीं है। बाय डिफॉल्ट अल्लाह ने जो बनाया है परफेक्ट बनाया है। आप देखें, ये पहला जुमला है अब तक का सूरह मुल्क का जिसमें अल्लाह का नाम आ रहा है। अल्लाह नहीं आया, क्या आया? अर्रहमान। सूरत वो है जिसका मेन थीम इंजार है, वार्निंग। सूरत वो है जो कुरैश के नाफरमानों को वार्न करने के लिए आई थी। सूरत वो है जिसमें मौत का कसरत से जिक्र है। सूरत वो है जिसके अंदर आपको अल्लाह की अब भी मेजेस्टी नजर आई जितनी आयात आई। सूरत वो है जिसके अंदर मौत का जिक्र कसरत से किया गया है, जहन्नुम का जिक्र कसरत से किया गया है। अल्लाह की अथॉरिटी शो की गई है, बियदिहिल मुल्क, अल्लाह का इख्तियार शुरू किया गया है। लेकिन नाम कौन सा आया? अर्रहमान, यानी अल्लाह मोहब्बत करने वाला है। याद रखो, अल्लाह अथॉरिटी रखने वाला है। याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, हाँ अल्लाह मौत देगा, लेकिन वो रहमान है, वो तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, वो तुम्हें इस मौत के बाद बाबरकत जिंदगी देना चाहता है, वो तुम्हें इस मौत के बाद बका वाली जिंदगी देना चाहता है, वो तुम्हें इस मौत के बाद एक अनलिमिटेड खैर वाली जिंदगी देना चाहता है। तो अल्लाह ने अपना नाम अर्रहमान यूज किया, या रहमान का लफ्ज, अर्रहमान का नाम वो नाम था जिसको कुरैश डिनाई करते थे। कुरान में भी आता है, कुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे, वमर रहमान, ये रहमान क्या होता है और ये अंदाज क्या था? माँ जो कहते हैं अरबी जुबान में, मन मन रहमान नहीं कहा, ये रहमान कौन है, कहा मर रहमान, ये रहमान क्या होता है। माँ अरबी जुबान में आता है किसी नॉन लिविंग चीज के लिए। तो रहमान के लफ्ज से चिढ़ते थे। अल्लाह ताला ने अपना इंट्रोडक्शन उसी नाम से कराया कि मोहम्मद का रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिसको तुम अब तक अल्लज़ी की शक्ल में देख रहे थे, जिसके लिए तुमने पढ़ा कि उसके हाथ में तमाम बादशाहत है, जिसके लिए तुमने पढ़ा कि मौत का इंस्टीट्यूशन उसने क्रिएट किया, जिसके लिए तुमने पढ़ा कि सात आसमान उसने लेयर बाय लेयर बना दिए। ये वो रब है जिसका नाम है अर्रहमान, वो तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है। उसकी तखलीक पर गौर करो, तुम्हें उसकी तखलीक में कोई फ्लॉ नहीं मिलेगा। अब तक अल्लाह की इस आयत के इस फ्लो तक तीन मखलूकात आई हैं। मौत का जिक्र किया गया, मौत अल्लाह की मखलूक है, जिंदगी अल्लाह की मखलूक है, और आसमान अल्लाह की मखलूक है। इन तीनों में से किसी को भी नहीं लाया गया, जनरली कह दिया गया कि अल्लाह की जितनी मखलूकात हैं उसमें कोई गैप नहीं है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। यानी अल्लाह मौत के बाद इंसान को जो ब्रांड न्यू जिंदगी देना चाहता है, वो अल्लाह देना चाहता है जो फ्लॉलेस हो। अल्लाह चाहता है वो बाबरकत जिंदगी हो। अल्लाह जिंदगी और मौत का बेहतरीन कनेक्शन बनाना चाहता है। तो अल्लाह ने यहां मोटिवेशन रखी है रहमान के लफ्ज में। यानी देखें, अल्लाह क्रिएटर है ना, आप कोई चीज बनाते हैं, आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, बहुत ही अच्छी मास्टरपीस बनी, तो आपसे सब पूछते हैं इस पेंटिंग के पीछे, इतनी डीप पेंटिंग है, इसके पीछे आपकी मोटिवेशन क्या थी? लोग पूछते हैं ना, जब आप कोई बहुत बड़ा दुनिया में काम करते हैं तो लोग पूछते हैं आपकी मोटिवेशन क्या थी कि आपने ये काम किया, आपकी मोटिवेशन क्या थी कि आपने ये चीज ड्रॉ कर दी, आपने ये चीज बना दी, आपने ये चीज क्रिएट कर दी। इस आयत के जुमले में मा तारा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत, ये बात वाज़ेह हो रही है कि अल्लाह की मखलूकात बनाने की मोटिवेशन सिर्फ एक है, मोहब्बत। बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह ने इंसान को जहन्नुम में ही डालना था, मारना ही था, खत्म ही करनी थी दुनिया, तो बनाई क्यों थी? अल्लाह की मोटिवेशन मखलूकात को बनाने की क्या है? मोहब्बत। अर्रहमान इज फुल ऑफ मोहब्बत। रहमान ने दुनिया बनाई है आउट ऑफ मोहब्बत। ये कोई फैक्ट्री में इमोशनलेस किसी तरह से कोई रॉ प्रोडक्ट की तरह इंसान नहीं निकले। एक एक इंसान अल्लाह की मोहब्बत की मैनिफेस्टेशन है। ایک ایک انسان سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ نے انسان بنائے تاکہ اللہ ان کو ان بہترین جنتوں میں داخل کرے جو جنتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. فرشتوں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی، انسانوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر انسان خود اپنے آپ کو اللہ کے عدل کے بریکٹ میں لائے گا تو اس میں انسان کا پرابلم ہے. اللہ نے تو رحمان ہوتے ہوئے تخلیق کیا ہے، محبت کے ساتھ تخلیق کیا ہے. اللہ کی ہر تخلیق میں محبت ہے. ہم جتنے بھی لوگ ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تب ہم اللہ کو بہت زیادہ فوکس میں نہیں رکھ رہے ہوتے، اللہ اس وقت بھی ہم سے محبت کر رہا ہوتا ہے. ورنہ ہمارے گناہ کرنے کے اوپر آسمان سے کوئی تھنڈر بال آئے اور ہمیں جلا کر راکھ کر دے. جس وقت ہم گناہوں کے اندر زندگیوں میں جری ہو رہے ہوتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے ارتھ کویک آنے میں اور زمین کھلے اور ہم اس کے اندر سما جائیں. اب تو سنک ہول اتنے عام بننے لگ گئے پوری دنیا کے اندر، کتنی دیر لگتی ہے سنک ہول بننے میں. ایک سنک ہول اپنے ساتھ ایک ہی علاقے کے کتنے گھروں کو گلپ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے سونامی آنے میں، ہم تو کراچی شہر میں بیٹھے سمندر کے منہ کے اوپر، کتنی دیر لگتی ہے ایک شہر کے ختم ہونے میں. اور جو کچھ ہمارے شہر میں ہونے لگ گیا ہے، ہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ خیر بھی بہت پھیل رہا ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شر بھی بہت پھیل رہا ہے. رمضان کے اندر افطار کے ٹائم پر ڈانس پارٹی، افطار اینڈ ڈانس پارٹی، ہضم نہیں ہو سکتی. افطار اینڈ ڈانس پارٹی آپ کو ٹائٹل دیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. کم سے کم انسان جھوٹا ہی صحیح رمضان کا مسلمان ہی بن جائے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے دیے ہوئے آسمان کے نیچے اور کس کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر متکبر بن کر، اس سے غافل ہو کر، اس کے ملک اور اس کی کنگڈم کو اگنور کر کے گناہ کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے، ہم غفلت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. دنیا ختم ہو جائے گی، بڑھاپا بہت جلدی آ جائے گا، اور یہ بھی نہیں معلوم بڑھاپا آتا ہے کہ نہیں آتا. ینگ ڈیتھس کامن ہوتی جا رہی ہیں. اٹس از ون آف دا پروفیسی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، جوان موتیں بڑھ جائیں گی. اور آپ دیکھیں 23 سال 24 سال ایکسیڈنٹ ڈیتھس تو بہت کامن ہو گئے ہیں، کامنلی رمضان میں کم سے کم 6 تو میں نے سن لیے 23 سے 25 سال کے درمیان کے جوان لڑکے، جوان بچے کہاں تھے، مطلب افطاری کرنے جا رہے تھے، کوئی افطاری کرنے جا رہا تھا، کوئی رات میں اب سحری کے ٹائم پر سحری کرنے جا رہا تھا. ہم لوگ بھی جب آؤٹ ہو رہے ہیں نا تو ہم اپنے بالکل ہی دائرے سے باہر نکل رہے ہیں. افطار پارٹیز ہوتی تھیں، اب تو ہماری سحور پارٹیز بھی ہوتی ہیں، سحور بوفے. کتنا کھائیں گے، کھا کھا کے کیا کر لیں گے؟ جو راتیں عبادت کی، جو راتیں سکون کی، جو راتیں اللہ سے دعائیں مانگنے کی، جو راتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، جو راتیں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کی، ہم سحور بوفیز میں ہیں. 12 بجے شروع ہوگا، 3 بجے ختم ہو جائے گا. دا پرائم ٹائم آف عبادت آف قیام اللیل 12 سے لے کر 3 بجے تک سحری بوفے، اور سب بھاگ بھاگ کر جائیں گے. سارا دن روزہ رکھ کے تھک گئے تھے نا، سارا دن روزہ رکھ کے ان 3 گھنٹے کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کر قیام کرنا پڑے یا جائے نماز پر گھر میں قیام کرنا پڑے تو جان نکلتی ہے، ہائے ٹانگیں ٹوٹ گئیں. اما کہیں کھڑی رہو میرے ساتھ، نہیں کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا، بیٹھ جاؤں. اور اما کہیں چلو بیٹا سحری بوفے میں چلتے ہیں. ہاں اما سے بھی پہلے گاڑی میں چھلانگ لگا کے سوچنے کا وقت ہے. یہ زندگیاں گزر جائیں گی. ہاں یہ نہیں اللہ نے کہا کہ آپ دنیا میں انجوائے نہ کریں، لیکن اللہ کے حقوق پر پاؤں رکھ رکھ کے اپنے نفس کی پیروی میں اپنی خواہشات کو پورا نہ کریں، پھر زندگیوں میں سکون کہاں تلاش کریں گے؟ پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان، پھر کہتے ہیں اسپاؤس جو ہے وہ بالکل کوآپریٹو نہیں ہے، پھر کہتے ہیں شوہر جو ہیں وہ آج کل بڑے لڑاکا ہو گئے، اور شوہر کہتے ہیں بیویاں بڑی لڑاکا ہو گئیں، بالکل بھی اکوموڈیٹنگ نہیں ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن، کبھی وراثت پر لڑتے ہیں، کبھی کاروبار پر لڑتے ہیں، کبھی گھروں پر لڑتے ہیں، کبھی ماں باپ کی خدمت میں کیوں کروں تم کرو، کبھی اس پر لڑتے ہیں. یہ سب علامات ہیں اللہ کی نافرمانی کی. جب ہم اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیں گے، اور اللہ نے کتنا حق اپنا کہا ہے لینے کو، اللہ نے نہیں کہا بیسٹ بن جاؤ، اللہ نے نہیں کہا سارا کچھ مجھے دے دو. زکوۃ کتنی نکالتے ہیں، 2.5% कुछ भी नहीं है 2.5%। अल्लाह चाहता तो कहता 50% निकालो साल पीछे, क्या कर लेते? कहता तो वो 2.5% में नहीं निकलता, थोड़ा थोड़ा करके निकाल दें, एक साथ कैसे निकालें? इतना कैश हाथ से एक साथ निकल जाएगा, जान निकल जाती है। अल्लाह से मदद मांगे, ये रमजान का महीना है। औलादें तो माँ बाप के लिए एक आजमाइश बनी हुई है, माँ बाप औलाद के लिए आजमाइश कम बने हुए हैं, बने हुए हैं बास जगह पर माँ बाप औलाद के लिए आजमाइश बने हुए, लेकिन औलादें माँ बाप के लिए आजमाइश बनी हुई हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस रमजान के महीने में कुछ हम पर ऐसा खास करम कर दे कि हमारी जो नाफरमानियां हैं वो हमारी जिंदगियों में से बिल्कुल डिलीट हो जाएं। और अल्लाह की कुदरत में हर शय है, हमारा ईमान है बियदिहिल मुल्क, जहां वो हमें सही कर सकता है, जहां वो हमें गुनाहों से दूर कर सकता है, वहां हमारी औलाद, हमारी नस्ल और हमारी उम्मत को हर तरह की बुराई से खींच के बाहर निकाल सकता है। डू नॉट बी एन अपोलोजेटिक मुस्लिम। नहीं नहीं करना आता, चले आपकी बहन ने आपको बुलाया सहरी बुफे पे, करें ना इनकार। छह लोग इनकार करेंगे तो 10 लोग सोचेंगे तो कि भाई ये सही नहीं है वक्त करने का। हम कहते हैं आप बुलाया ना, इनकार भी तो नहीं कर सकते। वो आपकी नमाज का टाइम, वो आपके आराम का टाइम, वो आपके सोने का टाइम। आप एक दिन जाएं 12 से लेकर 3 बजे के सहरी बुफे में, सारा दिन आपका डिस्टर्ब होता है, सारा दिन आपका सर भारी रहेगा। आपकी ना कुरान क्लासेस होंगी, ना आपकी नमाजें सही पढ़ी जाएंगी, ना आपकी रूटीन की कुरान की तिलावत होगी, चिड़चिड़ी आप वैसे ही रहेंगे। तो क्या फायदा हुआ? जहां लोग गलत रास्तों पर चल रहे हैं वहां लोगों को आहिस्ता मोहब्बत खुलूस और प्यार से अगर मना नहीं कर सकते, प्लीज डू नॉट बी पार्ट ऑफ दोज थिंग्स, डू नॉट बी पार्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज। स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो चीजें इस्लाम के कॉन्ट्रेरी हो रही हैं, कोई मजबूरी नहीं है कि आप और मैं उसका हिस्सा बने। पढ़ाई की हद तक मजबूरी हो सकती है, लेकिन पार्टीज, फेयरवेल्स, गालास, इस हद तक तो कोई मजबूरी नहीं है। क्या स्कूल वाले गन पॉइंट पर आपको सिक्योरिटी गार्ड भेजते हैं, निकलो घर से बाहर, हम तुम्हें जरूर लेकर जाएंगे इस ड्रेसिंग के अंदर फेयरवेल पार्टी में आना है। स्लीवलेस पहन कर आना है, साड़ी पहन कर आना है, लो नेक पहन कर आना है। कौन खड़ा होकर जबरदस्ती गन पॉइंट पर ये ड्रेसिंग करवाता है? माएं खुद बेटियों को, जवान बेटियों को उनकी फेयरवेल पार्टीज के लिए पार्लर लेकर जाते हैं। मेरे तो पांव से जमीन निकल गई जिस दिन मैंने ये मुझे ये पता चला कि ये बच्ची ए लेवल्स की है और जिस तरह वो तैयार हो रही थी, मैं समझी शायद क्रिश्चियन है, आई एम सो सॉरी टू से, उसकी जो ड्रेसिंग थी मुझे नहीं लगा वो मुसलमान है। जवान बच्ची और उसको जिस बॉल गाउन के अंदर माँ ने रखा हुआ था, माँ खुद खड़े होकर बता रही है कर्ल्स ऐसे डाल दें, स्प्रे यूं लगा दें, फ्रंट बैक लो नेक, और माँ खुद जाकर ड्रॉप करके आएगी। उसके बाद हम कहते हैं रिश्तों में चाशनी नहीं रही, बच्चों में अदब नहीं रहा, माल में और वक्त में बरकत नहीं रही, कहां से आएगी? अल्लाह दुआएं कबूल क्यों नहीं करता? इतने लाखों लोग हरम में खड़े होकर दुआएं मांगते हैं, काबे का गिलाफ पकड़ पकड़ कर गिड़गिड़ाते हैं, दुआ कबूल ही नहीं होती, दुआएं कैसे कबूल होंगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम याद रख लें, कैसे दुआ कबूल होगी? सर गर्द आलूद, हज के सफर में गया हुआ थका हुआ मुसाफिर काबे का गिलाफ पकड़ पकड़ कर दुआएं मांगता है, लेकिन उसकी दुआ कैसे कबूल हो? जो खाया वो हराम का, जो पहना वो हराम का, जिस सवारी पर बैठकर हज के लिए आया वो हराम की, तो फिर दुआएं कैसे कबूल हों? अगर आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमें अल्लाह के सामने बैठकर गिड़गिड़ाने की, माफी मांगने की जरूरत है। अगर हमारी औलादें हमारे साथ रिबेलियस हो रही हैं, हमें अल्लाह के सामने झुकने की जरूरत है। हमें अपनी औलादों को अल्लाह की मोहब्बत की तरफ लाने की जरूरत है। बच्चे हैं वो रिटेलिएट करेंगे, बच्चे हैं वो आजमाइशों की तरफ, फितनों की तरफ, टेम्पटेशंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हमारा काम है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ उनकी इस्लाह का काम करते रहें। इसलिए आपको बताया था कि इस सूरत का एक अहम पहलू कंसिस्टेंसी है। अल्लाह ने हमें जाया करने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने इस मखलूक को जहन्नुम में डालने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने मुझे जहन्नुम की आग का फ्यूल बनाने के लिए कलमा गो मुसलमान नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे आउट ऑफ मोहब्बत पैदा किया है। और जिस चीज को मोहब्बत से बनाया जाता है उसका जायका, उसका फायदा, उसकी बरकत ही अलग होती है। आप में से जितनी माएं हैं, जब आप अपने बच्चों को अपने हाथ से पराठा बनाकर खिलाती हैं, अपने बच्चों से पूछें कभी भी मेड के पराठे में उनको वो फ्लेवर नहीं आता, हालांकि वही आटा होता है, वही घी होता है, वही तवा होता है और वही चूल्हा होता है, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, अम्मी आप बना देना प्लीज। अम्मा कहती है मेरी जानी खानी है। जो आप खाना अपने हाथ से बनाकर अपनी औलाद को खिलाते हैं, अब तो बहुत रेयर केसेस हो गए हैं जहां खवातीन कुकिंग खुद करते हैं, कम हो गए ना, तो फिर शोहरों के दिलों में मोहब्बत कैसे आएगी, शोहर आपके गर्विदा कैसे होंगे। पहले जमाने में तो हमारी नानी दादियां कहती थी शोहरों के दिल तक जाने के लिए उनके स्टमक से होकर आना पड़ता है, तो अब तो हमने स्टमक के रास्ते को तो बंद ही कर दिया, दिल तक तो पहुंचने के चांसेस कम ही हो गए। तो ना शोहर आपके हाथ का पका हुआ खाना खाए, ना बच्चे आपके हाथ का पका हुआ खाना खाएं। और जो इंसान जिस इंटेंशन से खाना पकाता है, आपको मालूम है ये बात, अब तो मेडिकल साइंस जिस माइंडफुलनेस को बयान कर रही है, जिस तरह से मेडिकल साइंस अब चीजों को एलैबोरेट कर रही है, हमारे सामने तो इस्लाम की खूबसूरती खुलती ही चली जा रही है, बिल्कुल जैसे फूल खिलता चला जाता है। जो इंसान खाना पकाता है वो किस माइंडसेट से खाना पका रहा है, खाने में वो वाइब्स चली जाती है। बेचारी मेड कुक अपने घर में अपने शौहर से मार खा के आई, अपने बच्चों से जो है वो चिढ़कर आई, किराएदार को पैसे देने थे या लेने थे उस पर झगड़े करके आई, रोती धोती आकर उसने आपके घर में खाना पकाया और वो खाना उसने जिस तरह से भी हाथ चम्मच चलाया अपना, उसकी सारी वाइब्स आपके खाने में ट्रांसफर हो गई। पता नहीं खाना पकाते हुए बिस्मिल्लाह पड़ी भी कि नहीं पड़ी, और फिर वो आपने भी खाया और आपके बच्चों ने भी खाया, फिर हम कहते हैं हाँ सब इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं। मैं कोई इसके ऊपर ग्राउंड फैक्ट्स की बात नहीं करी, बट दीज आर जस्ट कनेक्शंस विच यू कैन बिल्ड टुगेदर, इसलिए कि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ साइंस। और बहरहाल हमें साइंस की बातें बड़ी अपील करती हैं, माइंडफुलनेस की बातें हमें बड़ी अपील करती हैं, द साइंस ऑफ वाइब्स आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें इसकी वाइब्स की साइंसेस बड़ी अपील करते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं, जब माँ मोहब्बत से बनाएगी, आपके माथे पे दो बल भी होंगे ना बनाते हुए, तो भी उस बल की बरकत जो है आपको अपने खानदान की मोहब्बत में नजर आएगी। लेकिन हमें अपने आप को थोड़ा सा अल्लाह के साथ अटैच करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी होगी, नफ्स को मारना होगा। जैसे अल्लाह ने हमें मोहब्बत के साथ बनाया है, ऐसे ही अल्लाह ने हमें ये सोचने की तौफीक दी है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के सामने, अल्लाह ने कोई मखलूक फ्लॉ के साथ नहीं बनाई। आज यहां जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं और जितने लोग इस वक्त यहां बैठे हैं, इस आयत के इस जुमले को, मा तरा फी खल्क रहमान मिन तफावुत, तुम रहमान की किसी मखलूक में कोई फ्लॉ नहीं देखोगे। आज के बाद इस आयत को याद कर लीजिएगा, जब कभी आपको अपनी जिंदगी परफेक्ट ना लगे, जब आप अपनी जिंदगी से कंप्लेंट्स करने लग जाएं, मुझे ऐसे बच्चे क्यों मिले, मुझे ऐसे अम्मी अब्बू क्यों मिले जो बिल्कुल अकोमोडेटिंग नहीं है, जो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जो बिल्कुल हर वक्त अपनी मर्जी चलाते रहते हैं। माँ बाप के फैसले आपके हक में परफेक्ट हैं, जैसे भी हैं, एतमाद कीजिए, हो सकता है इस वक्त अच्छे ना लग रहे हों, यू विल सी द फ्रूट्स इन फ्यूचर। माँ बाप औलाद के दुश्मन नहीं होते, माँ बाप वो वाहिद हस्ती हैं इस दुनिया के ऊपर अल्लाह के बाद जो कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। माँ बाप वो वाहिद हस्ती होते हैं, मैं खासतौर पर बच्चियों से कह रही हूँ, इसलिए कि बच्चियों को लगता है माएँ और बाप हमारे दुश्मन हैं, हमें खुश नहीं होने देते, हमारी मर्जी के कपड़े नहीं पहनने देते, लेकिन यह हकीकत है, अल्लाह ने जहां रखा है अल्लाह ने परफेक्ट रखा है, अल्लाह ने हमें जो बनाया है परफेक्ट बनाया है, अल्लाह ने जिन घरों का हिस्सा बनाया है परफेक्ट है। आज के बाद हम में से कोई भी इस बात पर कंप्लेंट ना करे मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, आज के बाद कोई बच्चा इस बात पर कंप्लेंट ना करे मेरे अम्मी अब्बू बिल्कुल अच्छे नहीं है। जुबान से नहीं बोलते बच्चे, मगर बच्चों की बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है, जब बच्चे पांव पटकते हुए जाते हैं, जब बच्चे दरवाजा जोर से बैंग करते हैं, जब बच्चे बिस्तर पर जाके दड़म से गिर जाते हैं, या बच्चे जब है एटीट्यूड शो करते हैं, अम्मा कहती है बेटा खाना खा लो, भूख नहीं लग रही, बेटा कुछ तो खा लो, कुछ भी नहीं खाना, ये जुमलों का मतलब क्या होता है? आपने जुबान से नहीं बोला कि आप मुझे अच्छी नहीं लगती, आप मेरी बात नहीं मान रही, असल में ये जुमले बता रहे होते हैं आई डोंट लाइक यू। कम बच्चे ऐसे जुबान से बोलते हैं, फिर थोड़ा बहुत लिहाज बाकी रहता है, मगर ये जो सारे इस तरह के सबलिमल मैसेजेस आ रहे होते हैं सटल अंदाज में, वो यही मतलब होता है, आप मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इनफैक्ट आप मुझे जहर लग रही हैं। दिल में तो यही बातें आ रही होती हैं। और फिर प्लीज कभी कंप्लेंट्स नहीं कीजिए, मैं आपको हकीकत बता रही हूं। और माँ बाप से गुस्सा करके, फ्रेंड्स को फोन करके माँ बाप की शिकायतें फ्रेंड से करना, इससे ज्यादा इमेच्योर एटीट्यूड कोई नहीं हो सकता। कभी भी मत कीजिए ना। खवातीन अपने शोहरों की शिकायतें अपनी अम्मा को फोन खड़का खड़का कर करें, आपको पता है अम्मी मुझे अपना घर बड़ा याद आता है। चलो अम्मी समझ गई, अकलमंद अम्मी हो ना वहीं शटअप करा दें। चलो बेटा अब मैं जा रही हूं जरा तुम्हारे अब्बा के लिए चाय बनाने, बाद में बात करेंगे। शिकायती एटीट्यूड को छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे अपने आसपास अल्लाह की रहमत नजर आएगी। अल्लाह की रहमत कैसे नजर आएगी? अल्लाह ने कुरान में कहा है व रहमती वसीअत कुल्ला शय, मेरी रहमत तो ऑलरेडी अल्लाह कहता है हर चीज को इन्वेलप किए हुए, सिर्फ देखने वाली आंख चाहिए, सिर्फ समझने वाला दिल चाहिए। अल्लाह की किंगडम को आप जितना देखेंगी उतना इंशाल्लाह आपको अल्लाह की तखलीक में कोई टेढ़, कोई फ्लॉ, कोई शॉर्टकमिंग, कोई कमी नजर नहीं आएगी। तो अल्लाह ने जो मोटिवेशन दी है और जो मोटिवेशन बताई है, अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, चाहे आसमान हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी मखलूक हो, अल्लाह ने आउट ऑफ मोहब्बत बनाई है। अल्लाह ने सूरह निसा की आयत नंबर 147 में कहा है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह को क्या पड़ी है तुम्हें अजाब दे अगर तुम ईमान वाले हो और शुक्र करने वाले हो। अल्लाह ने तो इस दुनिया से बेहतर दुनिया तुम्हारे लिए तखलीक की है, अल्लाह ने सिर्फ दुनिया से बेहतर बाबरकत दुनिया तुम्हारे लिए तखलीक की है। तफावुत अरबी जुबान में एक सिंपल मफहूम में कहते हैं कि ऐसी चीज जिसके अंदर कोई चीज स्किप कर जाए, कोई चीज मिस हो जाए। तो अल्लाह ने ऐसी मखलूकात बनाई हैं जिसमें कोई भी चीज स्किप नहीं करती, कोई भी चीज जो है वो मिस नहीं करती है, हर चीज जो है वो फेयरली कनेक्टेड है। आगे फरमाया फर्ज अल बसरा हल तरा मिन फुतूर, तो अपनी नजर को लौटा लो। आप देखें अपनी नजर को लौटा लो कहा है, इरजे अल बसरा, नजर को लौटाओ, यानी कि तुम ऑलरेडी पहले ही अल्लाह की मखलूकात को तो देख ही रहे थे। कौन इंसान है जो कुरान पढ़ने के बाद सर उठाकर देखेगा, ओ अच्छा सर के ऊपर आसमान है? बचपन से ही आसमान देखते हो, बचपन से ही अल्लाह की दीवी मखलूकात को देखते हो, इसलिए अल्लाह ने कहा है कि ऑलरेडी तुम सब अल्लाह की जितनी भी कायनात है उसको ऑब्जर्व तो कर ही रहे थे, यानी आप हमेशा हर साल वेकेशन पर जाते ही थे। अब जब वेकेशन पर जाएं फर्ज अल बसरा, तो जरा आसपास नजर को गौर से देखें, दोबारा नजर को दौड़ाएं। इंसान गुजरते गुजरते आगे चला जाए फिर उसको कहा जाए वापस आओ और फिर दोबारा देखो, ये इम्पैक्ट आता है फर्ज अल बसरा में। इंसान गुजरते गुजरते चला गया फिर उसको कहा जा रहा है कि वापस आओ और फिर देखो, रिटर्न योर गेज, अल्लाह ने तुम्हें जो दुनिया दी है इसको जरा दोबारा से ऑब्जर्व करना शुरू करो, स्टार्ट ओवर। अपने आसपास के रिश्तों को, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने दोस्तों को, अपने माहौल को जरा कुरान के लेंस से देखना शुरू करो। इंसान का पर्सपेक्टिव क्या है, इससे उसकी सराउंडिंग के कंक्लूजन बदल जाते हैं। एक ही इंसान, एक इंसान है जिसको अपने आसपास अपने कुरान के माइंडसेट की वजह से बहुत खैर नजर आता है, एक इंसान है जिसको अपने कुरान से दूरी की वजह से आसपास सिर्फ मुश्किलात और मुसीबतें नजर आते हैं। तो जब इंसान का माइंडसेट बदलता है, जब इंसान के पर्सपेक्टिव्स बदलते हैं तो सराउंडिंग के कंक्लूजन्स बदल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हमने इन्हीं घरों में रहते हुए, इसी माशरे में रहते हुए अपने माइंडसेट बदलने हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स ठीक करने हैं, अपने बच्चों को सही डायरेक्शन दिखानी है। आप और मैं अपने बच्चों को ग्रीन हाउसेस में बंद नहीं कर सकते, एक लिमिट तक आप उनको अपनी नजरों के सामने रख सकते हैं, एक लिमिट तक आप उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, एक लिमिट तक आप उनको जो है वो किसी जगह पर टाई करके रख सकते हैं, बट फाइनली दे हैव टू मूव आउट, दे हैव टू गो इन द वर्ल्ड, दे हैव टू सी द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। उसमें आपने उनको अल्लाह से ऐसा जोड़ना है कि आप और मैं उनके सर पर रहें या ना रहें, उनका पर्सपेक्टिव अल्लाह की फरमाबरदारी वाला हो। वो अपनी जिंदगी में फैसले कुरान के लेंस से करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखते हुए करें। एक ही इंसान सामने अपने मौजूद दरख्त को देखता है, उसको सिर्फ दरख्त नजर आता है। एक मोमिन दरख्त को देखता है, वो कहता है सुभान अल्लाह, इतने से बीज से इतना बड़ा दरख्त बना दिया। एक ही इंसान दरख्त को देखता है और कहता है कोई पत्ता ही नहीं है इसके ऊपर। اور مومن اس درخت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، ایک وقت آئے گا یہ بتوں سے بھر جائے گا. یہ مومن کی اپروچ ہے. اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹو کیجئے، اپنے مائنڈ سیٹ کو شکایتوں سے پاک کیجئے. آپ کو اپنے آس پاس ہر انسان فائدہ مند نظر آئے گا. حل ترا من فطور، اس کا میں نے آپ کو کہا تھا، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، جس کا آپ نے کہا کہ اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی شگاف نہیں ہے. حل ترا من فطور، فطور اصل میں فا پا را سے ہے. فاطرا یوسف علیہ السلام کی دعا آتی ہے. فاطر السماوات والارض کیا مطلب ہے؟ زمین اور آسمان کا بنانے والا. دیکھیں فاطرا، فاطرا بنانے والا، خلق پیدا کرنے والا. واٹس دا ڈفرنس؟ خلق پیدا کرنے والا، فاطرا بنانے والا، کوئی فرق لگ رہا ہے؟ اردو کے حساب سے بہت فرق نہیں لگتا. عربی لٹریچر میں خلق سے پہلے کی سٹیج ہے فاطرا، کسی چیز کو بنانے کے لیے جو انیشل پلاننگ کی جاتی ہے، اس انیشل پلاننگ کرنے والے کو فاطر کہتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے کہا فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پلاننگ کرنے والا خدا، آسمانوں اور زمین کو کس میتھڈالوجی پر، کس طریقہ کار پر، کس اسٹریٹجی پر بنایا جائے گا، اس خدا کی بات ہے، اس رب کی بات ہے. حل ترا من فطور کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ انیشیل پلاننگ کے وقت موجود تھا؟ تم میں سے کسی نے کسی مخلوق کی انیشیل پلاننگ آبزرو کی ہے؟ حل ترا من فطور کا ایک ترجمہ آج سے یہ بھی یاد رکھیے گا، جو آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے. دس از فرام دا کلاسیکل تفاسیر. حل ترا من فطور، کیا تم میں سے کوئی بھی کسی مخلوق کی انیشیل پلاننگ کے وقت اللہ کے ساتھ موجود تھا؟ ہمارا جواب کیا ہے؟ کوئی موجود نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ انسانوں کے اندر سے شرک کو دور کر رہا ہے. اللہ انسان کو اس کا مقام بتا رہا ہے. بیادہ ملک کے سامنے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ انسانوں کے تکبر کو ختم کر رہا ہے. اللہ انسان کے اندر سے اس کی کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ والی سینس کو کم کرنا چاہ رہا ہے. حل ترا من فطور، کیا تم اللہ کی کسی مخلوق کی انیشیل پلاننگ کے وقت موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس علم کو محفوظ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس علم سے اپنی عمل کی بہترین راہوں کو اڈاپٹ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو فزیکلی اور اسپریچولی اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہماری اولادوں کو اپنی محبت میں ہم سے بھی آگے لے کر جائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کلی عطا فرمائیے. اللہ جن کی جو دعائیں اور حاجات ہیں ان کی تمام حاجات اور دعائیں قبول فرمائیے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بخش کے، ہماری مغفرت کر کے ہمیں رمضان سے باہر شوال میں داخل کیجیے گا. اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائیے. اللہ اس آخری عشرے میں ہم سب کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیجیے. اللہ جو مرحومین آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی بہترین مغفرت فرمائیے. اللہ ہمارے لیے اس علم کو حاصل کرنا اور اس علم پر عمل کرنا آسان بنا دیں. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجیے. اللہ ہمیں صحت اور ایمان والی اور اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرمائیے. اللہ ہمارے لیے اپنی برکتوں کو حاصل کرنا آسان بنا دیجئے. اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائیے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کا حسنہ عطا فرمائیے. اللہ ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت پیدا کر دیجئے. اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. یا اللہ ہم پر اپنا رحم کیجئے. یا اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.